आप सुन रहे हैं हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव, एडिटर हेल्थ शॉर्ट्स हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह और आसान बना सकें। इसी वादे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं।
इस बार हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पर। अलग अलग रिसोर्सेस से इकट्ठे किए गए आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कमजोर मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही है। इनमें भी लगभग 8% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की गंभीर मेंटल हेल्थ डिजीज का सामना कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का यह संकट समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही खतरनाक है। आज इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नीरजा अग्रवाल। डॉक्टर नीरजा, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में।
थैंक यू सो मच।
डॉक्टर नीरजा अग्रवाल एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 वर्षों से अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम कर रही हैं। वे कई एनजीओ से जुड़ी हैं और यूनिसेफ के साथ भी काम कर चुकी हैं। डॉक्टर नीरजा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंक्रीजिंग डेटा पर कि आखिर क्या वजह है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार और इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है।
इसके बहुत सारे कारण हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार और तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे मुख्य कारण मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस भी है बहुत ज्यादा, बिकॉज आजकल हम बहुत अपने करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल एस्पिरेशंस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं और ऑफ कोर्स हमारा वर्क भी डे बाय डे काफी स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है एक दूसरे का हम लोगों को, और साथ में एस्पिरेशंस भी उतनी ही हाई होती जा रही हैं। कहीं उन एस्पिरेशंस के चक्कर में हम बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल एंजॉयस को, जिंदगी के बहुत छोटी छोटी खुशियों को हम भूलते जा रहे हैं। करियर एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत अच्छी सैलरीज हमको चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल हमको चाहिए, जिसके चलते चलते हम बहुत जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम काफी अकेले भी पड़ गए हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जैसे शहर में आ गए हैं तो बहुत ज्यादा हमारा सोशल सर्कल एक्सपेंड नहीं होता है, या तो प्रोफेशनल ही रह जाता है बहुत ज्यादा, अपने आस पड़ोसियों को भी हम लोग जानते नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर भी उतना बिल्डअप नहीं हुआ है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो जो एप्रोप्रिएट गाइडेंस मिलना चाहिए, जो एक इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, अगर वो आते हैं तो बस वो अपनी ड्यूटीज ही पूरा कर पाते हैं, जो एक फैमिली बॉन्डिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चों की इमोशनल वेलबींग में हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, हम लोग एक फैमिली टाइम अलग से नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स, जो दोनों ही पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे पाते हैं। नैनीज के पास बच्चे पढ़ रहे हैं या मेट्स के पास बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनकी इमोशनल हेल्थ में बहुत ज्यादा योगदान नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेक्टिक लाइफ स्टाइल है वो उस चीज को बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ हमें लेके जा रहा है। और एक बहुत ज्यादा ये भी देखा गया है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, ज्यादातर कंप्यूटर के आगे काम करना और ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं रह गई है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रह गई है, या अनलेस अंटिल आप बहुत एक रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम फॉलो नहीं करें तो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल इश्यूज, पीसीओएस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और वो बाद में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, अनट्रीटेड रह जाए तो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बिकॉज ऑफ इफेक्टिव लैक ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर हम लोगों का मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं।
डॉक्टर नीरजा, 70s में जब रिसर्च होती थी और उसके जो रिजल्ट्स आते थे उसमें अक्सर ये कहा जाता था क्योंकि पॉवर्टी बहुत है संसाधनों का अभाव है, लोगों को बहुत स्ट्रगलिंग लाइफस्टाइल है, उसकी वजह है कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसको अच्छे उपचार नहीं मिल पा रहे। अब सिनारियो एकदम बदल गया है। आप कह रही हैं कि संसाधन बहुत है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, हम खुशियां नहीं एंजॉय कर पा रहे, इसलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है। मसला क्या है आखिर?
बहुत ज्यादा डिवाइड है। देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए ना एक बहुत ही बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप कह रहे हैं पॉवर्टी, पहले ये होता था लैक ऑफ रिसोर्सेज से, जितने ज्यादा संसाधनों की कमी होती थी तो फिजिकल नीड ही पूरी नहीं हो रही है, और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का एक जबरदस्त, फिजिकल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल हेल्थ। तो उसकी वजह से भी जब आदमी के संघर्ष इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां पे भी चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत जबरदस्त डिवाइड है, जिनके पास है तो उनके पास वो उस चीज को एंजॉय करने का टाइम नहीं है, और कई लोग हैं जो जिन लोगों को भरपेट खाना ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो उन न्यूएंसेस को नहीं समझ पाते हैं कि मेंटल हेल्थ किस चीज के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। न्यूट्रिशन, एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, भरपेट खाना बहुत है, अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेरे पास साधन नहीं है वो एक कारण हो सकता है, तो सारा दिन साधनों को चिंता में लगे हुए हैं, और मेरे पास साधन इतने ज्यादा हैं उनको मैं कैसे व्यवस्थित करूं, कैसे मैं उनको अरेंज करूं, कैसे मैं उसको मैनेज करूं, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। तो दोनों ही रीजंस हो सकते हैं, बट आजकल ये जितना ज्यादा हमारा बढ़ रहे हैं हम लोग डे बाय डे, नाउ तो हम लोग डेवलप्ड नेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस भी नहीं कह रहे हैं आजकल, तो हमारी इकोनॉमी 5th इकोनॉमी बनने जा रही है, तो हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से, वर्क लाइफ बैलेंस की इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा हम लोग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं।
सही है कि हम डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक खतरा ये भी है कि 2030 की ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़े संकट है उनमें से पुअर मेंटल हेल्थ एक संकट है।
बिल्कुल।
और जो चैलेंजेस आपने गिनाए वो लगभग दोनों के लिए है, लेकिन क्या वजह है कि महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल हैं, महिलाओं को मेंटल हेल्थ समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है?
महिलाओं को मेंटल हेल्थ समस्याओं का सामना कहीं फ्रंट पे करना पड़ता है। सबसे पहले तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज भी इंडिया में महिलाओं के ऊपर ज्यादा हैं, और कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है उतनी ज्यादा महिलाओं में भी वो एस्पिरेशंस लेवल हैं, करियर है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करती हैं बिटवीन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल एस्पिरेशंस में, करियर एस्पिरेशंस में वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस और बर्न आउट हो जाता है, और कई बार अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरी नहीं होती है तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट और इनएडिक्वेसी रह जाती है, मैं अच्छी मदर नहीं बन पाई, मैं अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही हूँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, फैमिली को खुश नहीं रख पा रही हूँ, या फिर मैं करियर में बहुत सफर कर रही हूँ, आई एम इक्वली एजुकेटेड, मैं बहुत अच्छे से एजुकेटेड हूँ, अच्छे से मेरे अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, फिर भी एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। लोग लोअर लेवल की पोस्ट पे महिलाओं को देखना आज भी हायर लेवल की पोस्ट पे प्रेफर नहीं करते हैं, उनके अभी भी वो जेंडर बाइज्ड है कि शायद वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाएंगी। तो अभी कल ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें था कि 2 साल तक उसको हाईएस्ट रेटिंग मिलती रही, स्टिल 3 कैंडिडेट्स थे उस पोस्ट के लिए, सिर्फ जो 2 लोग चुने गए उनकी रेटिंग उससे कम थी। तो काफी काफी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है स्पेशली हायर पोस्ट के लिए। फिर एक और बहुत मेजर चैलेंज है आजकल महिलाएं जो फेस कर रही हैं वो है बॉडी इमेज इश्यूज, बिकॉज मीडिया में एकदम मीडिया परफेक्ट पिक्चर्स जो दिखाते हैं उसकी वजह से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट परफेक्ट बॉडी, उसके लिए भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे बिल्कुल सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बॉडी इमेज इश्यूज महिलाएं फेस करती हैं। ट्रॉमा और अब्यूज बहुत ही कॉमन है, हम लोग जितने भी केसेस देखते हैं, अगर 10 महिलाओं के केस देखें करीबन 4 केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें उनका या तो सेक्सुअल अब्यूज या इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस भी हैं, मीनोपोज की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन बहुत डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी फेस करती हैं महिलाएं, या फिर ड्यूरिंग द साइकिल भी उन लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, या पीसीओएस की वजह से भी, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी अक्सर मूड स्विंग्स रहती है जो कि अनट्रीटेड हो जाती है, तो फिर आगे जाके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस की बन जाती है. सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल्स की अच्छी वाइफ, अच्छी मदर, एक बहुत ही ज्यादा एक अच्छी गृहिणी होना चाहिए, और अगर आप पुरुषों के साथ कॉम्पीट कर रही हैं तो एक बहुत अच्छा एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. तो ये सब, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं.
डॉक्टर नीचा, आपने मूड स्विंग और एंजाइटी इन दो शब्दों का कई बार इस्तेमाल किया
जी,
क्या ये इतनी गंभीर चीजें हैं? या मैंने देखा है कि मेरे आसपास का हर व्यक्ति, खासतौर से यंग जनरेशन, हर रोज इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे मूड स्विंग्स होते हैं. तो क्या ये इतनी कॉमन चीज है या ये इतनी गंभीर चीज है, कैसे देखना चाहिए इसे?
देखिए, मूड तो आपका कभी भी फ्लैट नहीं होता है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते हैं कि जैसे वो ईईजी की लाइन होती है, अगर फ्लैट हो गई तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज डेड. मूड आपका कभी खुश भी रहेंगे कभी आप, लेकिन अगर आपका मूड बहुत दिनों तक एक बहुत ज्यादा डिप में है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके डे रोजमर्रा की दिनचर्या इफेक्टेड हो रही है, या आपका रोल इफेक्टेड हो रहा है, आपके एकेडमिक्स इफेक्टेड हो रहे हैं, या आप अगर वर्किंग है तो आपका काम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, आप कहीं आने जाने का आपका मन नहीं कर रहा है, मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, जिस काम को आप पहले इंजॉय कर रहे थे वो काम नहीं करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में उस चीज से फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको बोलते हैं कि अगर 2 सप्ताह से ज्यादा अगर आपका इसी तरीके का मूड चल रहा है तो हम उसको डिप्रेशन के डायग्नोस में काउंट करते हैं. तो मूड स्विंग्स, और कई बार आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप विद इन आवर्स आप कभी बहुत बच्चों की तरह एक्साइटेड और बिल्कुल और 2 घंटे बाद ही बिल्कुल ऐसा लो फील करते हैं जरा सा भी डिस्टर्बेंस होने से. तो अगर इतनी फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होती है तो भी कहीं ना कहीं कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं आपके व्यक्तित्व के जो आपको आगे जाके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस काफी फेस करने पड़ सकते हैं. तो मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन अगर आप कई दिनों तक लगातार उस फेज में बने रहते हैं, या फिर एक कुछ ही घंटों में आपके इतने जबरदस्त मूड स्विंग्स होते हैं कि कभी बहुत बच्चों की तरह एक्साइटेड और अगर जरा सा भी कुछ भी डिस्ट्रेसिंग हो गया तो आप बिल्कुल लो लेवल अपना लो टच करने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस काफी बढ़ जाते हैं. इस तरीके के पैटर्न से हमारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस काफी बढ़ जाते हैं. रही बात एंजाइटी की, तो एंजाइटी एक बहुत ही आजकल तो बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, और एंजाइटी एक बहुत ही हेल्पफुल फिनोमेना भी है. अगर आप एग्जाम्स का डर आपको नहीं हो तो आप पढ़े भी नहीं. हमारा डिफेंसिव फिनोमेना है, अगर आपको एंजाइटी नहीं हो तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं करो, आने वाले किसी भी आप अनसर्टेनिटी को आप फेस करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे अगर आप उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं. मगर जब आपको बात बात पे एंजाइटी होने लग जाए, और अगर आप एक बार एंशियस हो गए हैं और वो स्ट्रेसर आपकी लाइफ से चला भी गया है, तब भी आपका हार्ट बीट एलिवेटेड है, आपको चेस्ट में कंजेशन हो रही है, गला सूख रहा है, डाइजेशन रुक गया है, और आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तो वो ऐसे एंजाइटी पैटर्न पे आप बने ही हुए हैं, और छोटी छोटी बात पे आप जल्दी से एंशियस होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर चिंता का कारण बन जाता है, आपको एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने के काफी चांसेस रहते हैं उस केसेस में, और ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है.
हाँ, मतलब आपने ठीक कहा, ये वास्तव में बहुत कॉमन हो गया. कुछ लोग बहुत हर चीज को लेके बहुत टची हो जाते हैं, छोटी सी डांट को लेकर या छोटे से बदलाव को लेके, कोई भी ऐसी चीज जो उनके हाथ में नहीं है उसको लेके वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत लो फील करने लगते हैं, सेल्फ अशेम्ड होने लगते हैं. तो इस चीज का उपचार क्या हो सकता है?
एक्चुअली ये इसका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमने स्ट्रेस से रिलेटेड स्ट्रेस को कोप करने की स्ट्रेटजी सीखी नहीं है. कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसी ब्रिंगिंग अप मिलती है जहां वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से सीख जाते हैं कि अच्छा मेरे पेरेंट्स अगर कभी स्ट्रेस आता है, अगर कभी भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो इस तरीके से फेस करते हैं, बहुत अच्छी कोपिंग स्किल्स सीख जाते हैं। कुछ लोगों को वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है तो वो नहीं सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस से कोप करने की हमारे अंदर स्ट्रेटजीज नहीं है, हमारे पास इफेक्टिव टूल्स नहीं है, जिसकी वजह से हम उन चैलेंजेस को नहीं फेस कर पाते हैं, नहीं अच्छे से टैकल कर पाते हैं। तो इसका कारण यही रहता है। और हमें वो स्ट्रेस को कोप करने के, कैसे हम एंजाइटी को एड्रेस करें, कैसे हम एंजाइटी को कोप अप करें, उस चीज की स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए। हर चीज सीखी जा सकती है। ये स्ट्रेटजी स्ट्रेस से कोप करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप गिटार बजाना सीखते हैं, तो शुरू जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। तो आपके पास कभी भी आपकी किटी में इतने टूल्स होने चाहिए, अगर एक टूल आपका काम नहीं करता है स्ट्रेस से रिलेटेड, तो आप दूसरे टूल्स से काम चलाए, दूसरा नहीं काम करता है तो तीसरे टूल से काम चलाए। कभी भी आपके पास आपकी एक किटी होनी चाहिए, टूल किट होना चाहिए जिससे आप स्ट्रेस को अपने हैंडल कर सके।
एज एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या टूल्स है, वो क्या स्किल्स है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
बहुत ही सिंपल से टूल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें, अगर आप नोट करें तो एवरी इमोशन हैज अ फिजियोलॉजिकल बेस, ऐसे ही एंजाइटी का एक बहुत जबरदस्त फिजियोलॉजिकल बेस है स्ट्रेस का। आपकी पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, आपका हार्ट बीट बहुत एलिवेटेड हो जाती है, आपका ब्रेथ जो है शॉर्टन ब्रेथलेसनेस होने लगती है, आपको सांस जल्दी 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 लेने लगते हैं, आपका गला सूख जाता है, चेस्ट में कंजेशन सा फील होता है आपको, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है फिंगर्स में, शिवरिंग जैसे हो जाती है, और डिजीनेस होने लगती है, ब्रेन काम ही नहीं करता है, कुछ ऐसे आप स्ट्रेट सोच नहीं पाते हैं, या फिर डाइजेशन रुक जाता है तो बहुत ही नोजिया की फीलिंग होने लगती है। ये सब सिम्टम्स हमें कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए ही बने हैं। आज भी हमारा ब्रेन वैसे ही वायर्ड है जैसे हम हजारों लाखों साल पहले जंगल में रहते थे, जब हमारा एनवायरमेंट इतना ज्यादा अनसर्टेन था, हमें बिजली से डर लगता था, जंगली जानवरों से डर लगता था। तो आज भी हमारा ब्रेन, चाहे कोई भी एक्सपेक्टेड स्ट्रेसर आ जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे पीछे कोई शेर लगा हो या जंगली जानवर लगा हो। बिल्कुल वो उसकी लैंग्वेज में ये एक डेंजर है। जो भी अनएक्सपेक्टेड जो हमें लगती है, अनसर्टेनिटी लगती है, अनिश्चितता सी लगती है कि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो उससे बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। तो जैसे, और उसका यही कारण होता है कि हम लोग फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में जाते हैं, या तो हम भागने लगते हैं या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, जैसे सुन्न हो जाते हैं एकदम देख के कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आज भी हमारा ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करता है किसी भी अनिश्चितता से जो भी हमारे एनवायरमेंट में होती है, और हार्ट जो है बहुत तेजी से काम करता है ताकि हम फाइट फ्लाइट मोड में हमारे एक्सट्रीम मसल्स को ब्लड फ्लो जा सके, ताकि वो तैयार हो सके भागने के लिए या लड़ने के लिए। इसीलिए हम जल्दी जल्दी ब्रेथ लेना शुरू करते हैं ताकि हार्ट जल्दी जल्दी से पंप कर सके। सो हमें ये नोटिस करने, ये सारे साइंस, डाइजेशन रुक जाता है हमारा क्योंकि ब्रेन कहता है कि अभी टाइम नहीं है एनर्जी वेस्ट करने का डाइजेशन में, अभी तो सर्वाइवल मोड में जाना है, डू और डाई वाला सिचुएशन है। तो हमें डाइजेशन अचानक से रुक गया तो वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, फिर इतनी तेजी से हम ब्रेथ ले रहे हैं तो हमारा चेस्ट कंजेशन फील करता है, गला सूख जाता है क्योंकि स्लाइवा हमें डाइजेशन में हेल्प करता है मगर स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि डाइजेशन रुक गया है। यहाँ तक कि ब्रेन कहता है अभी सोचने का भी टाइम नहीं है कि तुमको पेड़ पे चढ़ना है, जंगली जानवर पीछे लगा है, या आग जला के उसको डराना है, अब तो बस भागना है अगर बचना है तो आपको, या फिर लड़ना है अगर ऐसी स्थिति में आ गए हो कि आप भाग भी नहीं पा रहे, या फिर हम फ्रीज हो जाएंगे एकदम। तो ब्रेन कहते हैं अभी सोचने का भी टाइम नहीं है, तो ब्रेन से भी ब्लड फ्लो हमारी एक्सट्रीम मसल्स को जाने लगता है, इसीलिए डिजीनेस होने लगती है हमें, बहुत बार कुछ समझ में नहीं आता और ब्रेन जैसे ब्लैंक हो जाता है। इसमें सबसे पहले ये नहीं है कि अगर बाहर का वातावरण है तो हमारा ब्रेन सजेस्ट कर रहा है कि अरे भाई खतरा है, हमारी बॉडी भी हमें सिग्नल देती है कि जब हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है तो ब्रेन मैसेज लेता है कि भाई बहुत ज्यादा खतरा है। तो सबसे पहले है कि हमें डीप ब्रेथ करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है अगर आपको एंजाइटी को कंट्रोल करना है। और डीप ब्रीदिंग भी आपको 3 से 4 मिनट तक करेंगे, तब जाके हम रेस्ट एंड एडजस्ट की सिचुएशन में आ पाते हैं। जैसे वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही डीप ब्रीदिंग भी 3 से 4 मिनट तक अगर लगातार करते हैं तब काम आती है। बहुत सारे बच्चे वो बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं डीप ब्रीदिंग कुछ काम नहीं करता है। यस, जब हम घबरा जाते हैं तो कुछ काम नहीं आता है। उसका कारण ये है कि हम जब एंग्शियस नहीं है हमें तब ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, ताकि हम जब भी हम एंग्शियस हो तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान डीप ब्रीदिंग की तरफ जाए। जैसे हम सुबह उठते ही वॉशरूम में जाते हैं तो पहले ब्रश पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि अब वो ऑटोमेटिक हो चुकी है, हमें आदत हो चुकी है उस चीज की। कभी किसने बहुत हमसे रोज प्रैक्टिस वो करवाई, आज बिल्कुल ऑटोमेटिक हो चुकी है। ऐसे ही इन सब भी टूल्स को भी हमको अपनी दिनचर्या में लाना है, ताकि हम जब जब एंग्शियस हो तब तब उसका यूज कर सके। कुछ भी चीज तब काम नहीं करती है अगर आप उस चीज को तभी अप्लाई करने का सोचें जब आप एंग्शियस हैं। जब आप एंग्शियस हैं तो ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि ब्रेन से भी ब्लड फ्लो आपकी एक्सट्रीम मसल्स को चला जाता है। तो इन सबको हमको दिनचर्या में लाना होगा। डीप ब्रीदिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, ग्रुप ऑफ मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है एक्सट्रीम रिलैक्सेशन मिलता है।
वो कौन सी मसल्स है, मतलब हम टूल्स की तरफ ही बढ़ रहे थे, उसमें से सिर्फ अभी तक एक ही टिप निकल के आया कि डीप ब्रीदिंग कीजिए। जिन मसल्स की आप बात कर रही हैं वो कौन सी मसल्स है और उसको करना कैसे?
अगर हेड टू टो आप बात करें, जैसे आप पहले आप फीट ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट योर फीट, कॉन्ट्रैक्ट काफी कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट 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 एंड देन रिलैक्स, यू विल गेट इंटेंस रिलैक्सेशन। देन काफ मसल्स, थाइस, लोअर एब्डोमिन, chest muscles, then your arms, upper arms, lower arms, and make a fist of your hands and contract, 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 and feel that contraction also. You should feel that tension. आपको टेंशन वो फील करनी है, एंड देन रिलैक्स, एंड यू शुड फील दैट रिलैक्सेशन आल्सो। देन चेस्ट मसल्स हो गई, देन आपका शोल्डर हो गया, नेक मसल्स, फेशियल मसल्स। तो आपको अगर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करते हैं तो भी आपको इंटेंस रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से क्या होता है, एक तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, आपको इंटेंस रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपने किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको फील किया अच्छे से एंड देन रिलैक्स किया, तो इट इंटेंसिफाइज योर रिलैक्सेशन। एंड दूसरी थिंग, इट ऑल्सो गिव्स यू अ मैसेज कि टेंशन इज नॉट दैट ऑटोमेटिक, इतना भी ऑटोमेटिक टेंशन नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन, आप टेंस भी कर सकते हैं उसको, रिलैक्स भी कर सकते हैं। सो प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन एक बहुत अच्छा टूल है। इसके अलावा अगर आप अपना हेल्दी ईटिंग स्टाइल रखें, अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली सेचुरेटेड फैटी डाइट नहीं खाते हैं, पिज्जा और ये हाईली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक वगैरह अगर आप नहीं लेते, या स्टिमुलेटेड ड्रिंक्स जैसे कैफीन हो गया, या फिर आप अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, तो उससे भी आपके एंजाइटी लेवल काफी काम डाउन रहते हैं। अगर आप हाईली, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कैफीन वगैरह लेते हैं फॉर फ्यू मिनट्स यू विल फील गुड, जो आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा अप हो जाती है, थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी कम लगती है, बट देन धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो आपको बिना इन ड्रिंक्स के आप यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर एंग्जाइटी। तो जब आपका टॉलरेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, सो लो कट डाउन योर कैफीन इनटेक और हाईली शुगर डाइट। तो जितना बैलेंस डाइट रखते हैं, आयुर्वेदा कहता है कि 90% ऑफ सेरोटोनिन लेवल, विच इज अ हैप्पीनेस हार्मोन या फील गुड हार्मोन, सेरोटोनिन डिप्रेशन में सेरोटोनिन की बहुत कमी हो जाती है, तो 90% ऑफ योर सेरोटोनिन लेवल इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट एरिया। अगर आप उस गट को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अच्छा उसका अच्छे से उसको हेल्दी रखते हैं, तो आप काफी हद तक डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं। तो हेल्दी डाइट एंड टेक एनफ स्लीप। आजकल के जिस तरीके से हम बिजी स्केड्यूल होता जा रहा है, हम लोग प्रॉपरली, हमारा स्लीप नहीं रह गया है, डिस्टर्ब स्लीप ज्यादा रहता है, एक रेस्टफुल स्लीप नहीं मिल पाता है। सो आप मेक श्योर दैट योर स्लीप लेवल, स्लीप शुड बी साउंड प्रॉपरली, स्लीप हाइजीन फॉलो कीजिए अच्छे से। आप जब आप आपका ब्रेन फुली रेस्टेड होता है तो एंजाइटी लेवल कम हो जाते हैं. यस, एक और चीज हमने कोरोना से सीखी कि चेंज व्हाट यू कैन चेंज एंड टॉलरेट व्हाट यू कैन नॉट चेंज. अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो आपको प्रेजेंट में रखता है, ग्राउंडेड रखता है अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में. आपको मोस्टली हमारी अपनी लाइफ या तो पास्ट का सोचते हैं और या फिर हम फ्यूचर के बारे में चिंतित रहते हैं या पास्ट के बारे में गिल्ट लेके बैठे होते हैं. सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कीप्स यू इन प्रेजेंट एंड ऑल्सो आपको एक आपकी प्री फ्रंटल की फंक्शनिंग को बेटर कर देता है, आपके रैशनल ब्रेन की फंक्शनिंग, लॉजिकल ब्रेन की फंक्शनिंग को बेटर कर देता है. एंड जहां तक हो सके सीक सपोर्ट ऑफ गुड थेरेपिस्ट. अपना एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाइए ऑफ योर गुड फ्रेंड्स, गुड रिलेटिव्स, एडवाइजर्स. और डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प. अगर आपको हेल्प की जरूरत है डिस्कस विद अमंग योर लव्ड वंस. अपनी शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करते हैं शेयरिंग से उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. शेयर करना अच्छी बात है, रूमिनेशन इज नॉट वेरी गुड. सो जितना आप मेडिटेशंस वगैरह करते हैं या अपना अच्छे से आप अगर आप किसी से बहुत शेयर करते हैं, जर्नलिंग इज वेरी गुड. अगर आपको बहुत ज्यादा एक बहुत ही कोई ऐसी ओवरवेलमिंग इमोशन है जिसको आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, जर्नलिंग इज द बेस्ट वे. ब्रेन डंप होता है कि अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में है कि आप सो ही नहीं पा रहे हैं, टेक अ डायरी एंड नोट इट डाउन व्हाट इज ट्रबलिंग यू. बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दीज टेक्निक्स आप इन सब चीजों से अपनी एंग्जायटी पे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. यस, आपको जहां तक हो सके सीक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए. हम लोग अक्सर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए. देखिए आपकी प्रॉब्लम्स के कितने सॉल्यूशन, एंड डोंट थिंक अबाउट वन और टू सॉल्यूशंस, थिंक एंड एज मेनी सॉल्यूशन एज यू कैन. सो दैट अगर एक काम नहीं करता है तो आप दूसरे पे आइए, दूसरा काम नहीं करता है तो तीसरे पे आइए.
डॉक्टर नीरजा बहुत यूजफुल आपने टिप्स दिए, बट एक चीज और है. आजकल जो बहुत ज्यादा जिसका यंग जनरेशन को सामना करना पड़ रहा है वो है बैड रिलेशनशिप के बाद होने वाला ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये क्योंकि एक लंबा वक्फा अपने साथ लिए रहते हैं, आप उनसे स्ट्रगल करते रहते हैं इन एनी फॉर्म, तो उससे ओवरकम होने के लिए आपको क्या करना और ये कैसे आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है?
यस, आपने बिल्कुल सही बोला है. मैं आज बहुत ज्यादा हम ये देखते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे हैं आप, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. अक्सर या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, जो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आपको मतलब रेसिप्रोकल नहीं है, बराबर नहीं है रिलेशनशिप, जिसमें आप अक्सर गिविंग एंड पे हैं बट आप उस रिलेशनशिप को कैरी करते रहते हैं. तो ये आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है. प्रोफेशनली यू आर वेरी एप्ट, वेरी आप बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत असर्टिव भी हैं प्रोफेशनल वाइज, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रिलेशनशिप आप समहाउ वो बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आप उन रेड फ्लैग्स को नहीं देख पाते हैं. सो इसका कारण बहुत हद तक ये भी है कि कहीं ना कहीं इमोशनली हम लोग सब लोनली फील करते हैं या एक इमोशनल पैकेज कैरी किए रहते हैं, ज्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आते हैं. अक्सर हम लोगों को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलने के बाद हम उस रिलेशनशिप में वो जो रेड फ्लैग्स हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं. हमको बस उस रिलेशनशिप की अच्छाई दिखने लगती है और हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं उसकी तरफ. और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें वो रेड फ्लैग्स बहुत क्लियरली दिख रहे होते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब उस चीज कुछ तो अच्छा होगा जो मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, और अगर इसमें से बाहर निकलूंगा तो ये भी रहता है अक्सर कि मुझे दूसरा रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, अक्सर इस चीज की भी चिंता रहती है. तो आपको बहुत ही अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर बनानी चाहिए, जिससे कि आपको डिफरेंस बिटवीन हेल्दी रिलेशनशिप, क्या आप उस रिलेशनशिप में ओपन हो पाते हैं, आराम से अपनी बात रख पाते हैं, ये क्या आप गिव एंड टेक बराबर है उसमें, या आप ही गिविंग एंड पे चलते जा रहे हैं, आप ही मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्ट करते जा रहे हैं. आपको ये देखना होगा, आपको वो रेड फ्लैग्स अच्छे से आने चाहिए. और उसके लिए सबसे पहले अक्सर ये देखा गया है जब लो सेल्फ एस्टीम होती है इंसान की तो वो अक्सर इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आता है. सो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है आपको, अपने को सेल्फ कंपैशन, एक चीज होती है अक्सर लोग आजकल सेल्फ कंपैशन और सेल्फ केयर को कंफ्यूज कर देते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि जाके अपने आप को पार्लर में पैम्पर करना, या अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट में, या अपने को एक डेट पे, सोलो डेट पे लेके जाना। सेल्फ कंपैशन का मतलब नहीं, ये नहीं है सेल्फ, ये सेल्फ केयर है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप को उस काइंडनेस और उस कंपैशन से देखना जिस काइंडनेस और कंपैशन से आपने अपने फ्रेंड्स को देखते हो, अपने लव्ड वन को देखते हो। अक्सर हम अपने वर्स्ट क्रिटिक होते हैं, हम अपने आप को अपनी अपनी लिमिटेशंस को, अपनी कमियों को उतने अच्छे से स्वीकार नहीं पाते हैं। तो हमें अपनी अपनी खूबियों को, अपनी लिमिटेशंस को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे हम किसी लव्ड वन की, अपने अपने किसी खास दोस्त की कमी को स्वीकारते हैं। और जब हम अपने आप को बहुत कंपैशन से देखते हैं तभी हम उससे रिलेटेड काम कर पाते हैं। अगर हम बहुत अपने क्रिटिक्स बने रहते हैं तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। ओपनली अपनी बात को कम्युनिकेट करें, ओपनली अपने फियर्स को, अपनी अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करें। एम्पैथी भी एक्सप्रेस करनी चाहिए कि ओके आई अंडरस्टैंड कहाँ से आप आ रहे हैं, क्या आपके कंसर्न है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरे ये कंसर्न है। तब आप आराम से बता सकते हैं जहाँ, और अपने इश्यूज जल्दी से एड्रेस करने चाहिए जितनी जल्दी। अगर आप उनको लेके बैठे रहते हैं, टालते रहते हैं, कोई बात नहीं आगे देखेंगे, तो वो एक दिन इतना ज्यादा अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आई स्टेटमेंट्स, आपको जहां तक आई स्टेटमेंट्स यूज करनी चाहिए कि मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, यानी कि आपकी फीलिंग्स की जिम्मेदारी आपकी है और दूसरे की फीलिंग्स की जिम्मेदारी उसकी है। तो आपकी इस बात से मुझे ऐसे फील हुआ। अगर आप ट्रेट्स पे ना जाके पर्टिकुलर उस इंसिडेंट की बात करेंगे, तभी की तभी इंसिडेंट्स की बात करेंगे, तो वो दूसरा पर्सन भी थ्रेटनिंग फील नहीं करता है। तो जहां तक हो सके अपनी बाउंड्रीज बनाइए, क्लियर बाउंड्रीज रखिए अपने रिलेशनशिप में, इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करें। और अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा इन्वेड करता है तो उसको आप क्लियरली एनफोर्स करना है, क्लियरली बताना है आपको। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको लगता है कहीं आप गलत हैं तो आप माफी मांग लीजिए, उसको अमेंडमेंट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है इश्यूज आपके बहुत छोटे थे तो फॉरगिवनेस भी होना चाहिए, बट प्रायोरिटाइज क्वालिटी टाइम। रिलेशनशिप में मैं ये कहूंगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिसमें आप अक्सर ड्रेन्ड फील करते हैं, ना उसको छोड़ पाते हैं ना उसमें रह पाते हैं, तो उनसे निकलना ही बेटर होता है जितना जल्दी आप निकल पाए। ऑलवेज हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप के बीच का डिफरेंसेस आप देखिए, उसके लिए अपने जिनको आप बहुत मानते हैं उनसे सलाह कीजिए, अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर को बनाए रखिए, और नहीं तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ताकि आप उस रिलेशनशिप में से निकल पाए। अक्सर ये होता है कि हम इमोशनल बैगेज की वजह से या इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी बहुत हो जाती है जिसकी वजह से हम निकल नहीं पाते, या फिर हमने इतना ज्यादा टाइम उस रिलेशनशिप में दे दिया, हम अक्सर जस्टिफाई करने लगते हैं उस चीज को कि मैंने इतना टाइम दे दिया अब कैसे होगा, अब तो निकलना उसमें से बेवकूफी होगी, इसका मतलब मैंने सारा टाइम बर्बाद कर लिया, तो उसके चक्कर में आप अपने आने वाले टाइम को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो आप देखिए, उसको पढ़िए रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स को।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, जिसपे कुछ भी काम नहीं करता, और वो है व्हेन यू लॉस्ट समवन, वेदर आपके पेरेंट्स हो, आपका पार्टनर हो, ऐसी स्थिति में क्या सेल्फ हेल्प काम करती है या आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए?
जब आप किसी को खो देते हैं तो बहुत अक्सर स्टेजेस होती हैं उस चीज की। सबसे पहले हम डिनायल में जाते हैं, हमारा ये मन मानने को तैयार नहीं होता कि वो चला गया, हम कहते कि नहीं वो कहीं कहीं है, आ जाएगा, वो आस पास ही है, कहीं नहीं गया है। फिर धीरे धीरे हमें गुस्सा भी आने लगता है, अरे हमें तो छोड़ गया प्रॉब्लम्स के साथ, और खुद तो छूट गया, हमें छोड़ गया। फिर बार्गेनिंग भी होने लगती है कि अगर ऐसा हो जाता तो वो शायद बच जाता, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, तो शायद ये हो जाता। फिर कहीं जाके हमें सिंक इन, और उसमें हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि अब हमारे लव्ड वन की जो चीजें हैं या तो हम उसको बिल्कुल उनको संजो के रखना चाहते हैं या फिर उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। धीरे धीरे डिप्रेशन आने लगता है, जब हमें लगने लगता है कि नहीं वो नहीं आएगा, और फिर आता है एक्सेप्टेंस, जब हम उस रियलिटी को एक डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस में 6 months का टाइम इज अ वेरी नेचुरल टाइम जब आप उस चीजों से गुजरते हैं। लेकिन अगर आपको वो 6 months से ज्यादा टाइम लग जाता है और अभी भी आप ग्रीफ में हैं, अभी भी आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दिनचर्या इफेक्टेड हो रही है, आपका काम भी बहुत इफेक्टेड हो रहा है और आपके रिलेशनशिप भी अक्सर उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, तो आपको हेल्प लेना चाहिए। अक्सर ये कोविड में बहुत हुआ था कॉम्प्लेक्स ग्रीफ की, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से, हमारे यहाँ ऐसा होता है 13 दिन तक बैठ के उसको डिस्कस किया जाता है पूरा, जो भी आते हैं उनको सब बताते हैं, ऐसे गए थे, इस तरीके से गए थे, इस तरीके से गए थे, तो सब लोग बैठे होते हैं इकट्ठे बैठ के, उसका दुख बढ़ जाता है। लेकिन कोविड में ऐसा सब नहीं हो पाया, तो कॉम्प्लेक्स ग्रीफ हुआ, देन यू शुड टेक हेल्प। अक्सर ये स्टेजेस, कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक्सेप्ट करके फिर दोबारा से इन्हीं स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं, सीक्वेंस नहीं चलता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं इन स्टेजेस में से। तो 6 months तक का तो नॉर्मल टाइम हम मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लगे तो देन यू शुड टेक हेल्प।
थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरजा, आपने मेंटल हेल्थ से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमें दी। आप हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में आई, आपका बहुत बहुत आभार।
थैंक यू सो मच।
ये था हमारा आज का एपिसोड, इसे प्रोड्यूस किया था श्रुति पाल ने और एडिट किया था संजू अब्राहम ने। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com पर। हेल्दी जिंदगी सीजन 2 पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, क्योंकि पहला धन निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।